सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाई, हम सब लोग ईश्वर विश्वास पथ की दृष्टि से ईश्वर विश्वास को सजीव बनाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। पांच महावाक्य श्री महाराज जी ने बताए। परमात्मा से अपना नित्य संबंध है, परमात्मा से हम सभी का जातीय संबंध है, परमात्मा से हम सभी का आत्मीय संबंध है, उनसे अपने को कुछ नहीं चाहिए और अपने सहित अपने पास जो कुछ दिखाई देता है वह सब उनका है। सर्वस्व समर्पण कहाँ सजीव होता है? निष्कामता की पृष्ठभूमि में। प्रथम तीन वाक्यों के संबंध में कल तक हम लोगों ने कुछ कुछ चर्चा की, शेष दो बातें और रह गई हैं जिनकी चर्चा अभी होगी। सब कुछ उनका है, अपना कुछ नहीं है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता की पृष्ठभूमि में समर्पण सजीव होता है। सब कुछ परमात्मा का है ऐसा मानने में हम लोगों की कोई अपनी उदारता काम करती हो कि अपनी कोई विशेषता हो, ऐसी बात नहीं है। जब आप परमात्मा को ही सृष्टि का मालिक कहकर स्वीकार करते हैं तो सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा है, तो फिर उस सृष्टि में से किसी भी वस्तु पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? एक मिल्कियत के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? ऐसा विचार करिएगा तो युक्ति से भी यही बात ठीक मालूम होती है कि इस प्रतीत होने वाले जगत में किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। शरीर अपने पास दिखाई देता है और उसको हम बहुत निकट मान लेते हैं, उस शरीर को अपना करके मान लेते हैं, तो इस भूल के कारण बहुत सी वस्तुओं से और बहुत से व्यक्तियों से लगाव बन जाता है। विचार के प्रकाश में आपने विचार करके देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर, प्राकृतिक विधान से संचालित शरीर बन गया है। इस भौतिक सीमा के भीतर इसको मेंटेन किया जा रहा है, ये रह रहा है और इसी के भीतर प्राकृतिक शक्तियों की सहायता से, प्राकृतिक विधान से ही इसमें क्षति आरंभ होती है, बिगाड़ होता है, गिरावट आती है, बनता है, रहता है, बिगड़ता है, बदलता है और मिट जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं शरीर के संबंध की सब कुछ भौतिक सीमाओं के भीतर ही होती हैं, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही संचालित होती हैं। मैंने इस शरीर को बनाया भी नहीं और हम इसको रख भी नहीं सकते और अपनी मर्जी के अनुसार चला भी नहीं सकते, अपनी मर्जी के अनुसार इसको जैसा चाहे वैसा इसका उपयोग भी नहीं कर सकते, फिर भी इसको अपना मानते रहते हैं। इसी भूल के कारण इसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। मैंने तो ऐसा विचार करते करते देखा कि एक इस भूल के कारण जन्म जन्मांतर हम वस्तुओं के लोभ और व्यक्तियों के मोह में फंसे रहते हैं। अब विश्वास पथ की साधना के लिए जिसने परमात्मा में विश्वास किया, उनको सृष्टि का मालिक माना, तो उस साधक के लिए बड़ी आवश्यक बात यह होती है कि वह सब कुछ परमात्मा का मान ले। है तो उनका ही, कभी भी इससे अलग कोई बात और हो नहीं सकती है, लेकिन अब तक मैंने अपनी भूल से एक शरीर को अपना माना, दूसरे शरीरों को पराया माना, और एक के संबंध से बहुतों से राग हो गया और बहुतों से द्वेष हो गया। आसक्ति, ममता, राग, द्वेष, इन दोषों से हम पीड़ित हो गए। और अपनी आवश्यकता कैसी है? आवश्यकता ऐसी है कि कितना अच्छा होता कि हृदय में सदैव प्रेम रस लहराता। ऐसी सरसता की आवश्यकता हर भाई बहन अनुभव करते हैं, लेकिन प्रेम रस की कमी में नीरसता से पीड़ित हम अपने को पाते हैं। और जब अपनी ओर देखते हैं तो राग द्वेष की ज्वाला दिखाई देती है, काम क्रोध लोभ मोह विकारों की दशा दिखाई देती है। उस दशा को मिटाने के लिए हम सब लोग मानव जीवन के सत्य को स्वीकार करने बैठे हैं यहाँ सत्संग की मंडली में। तो दो बातें जो आज विचार के लिए हैं हमारे सामने, उनमें से एक यह है कि अगर आप ईश्वर विश्वासी हैं तो अपने सहित अपने पास जो कुछ है किसी पर ममता की मुहर मत लगाइए। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ उन्हीं का है, इस सत्य को स्वीकार करिए। यह कल्पना नहीं है, यह मान्यता नहीं है, यह सत्य है कि किसी का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। किसका है? भौतिकवाद की दृष्टि से जगत का है। जिसने जगत की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया वह कहेगा कि सब कुछ जगत का है, और जिसने आस्तिक होने के नाते ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया वो कहेगा कि सब कुछ ईश्वर का है। ऐसा मानने में मुझे एक सहूलियत मालूम होती है। कभी कभी ऐसा सोचने में कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आदमी को भय लगता है, क्योंकि भीतर से आदमी को अभी अचल आधार नहीं मिला है। वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उस भ्रमात्मक आधार पर समय काट रहा है आदमी। उसको जब सलाह दी जाती है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे कि तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो उसका साहस ही नहीं होता। यह कहने का कि मेरा कुछ नहीं है, उसे डर लगता है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, तो भीतर भीतर आदमी अधीर हो जाता है कि हाय मेरा कुछ भी नहीं है तो किसके आधार पर जीऊं, उसको घबराहट होती है। लेकिन प्रभु विश्वासी भक्तजन जब यह सुझाव देते हैं कि भाई मेरा नहीं है, ऐसा मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। एक तरह से तुम अपने को ममता से मुक्त करोगे तो बड़ा विकास होगा तुम्हारा। सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा बड़ा समर्थ मालिक है, तुम क्यों डरते हो? डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, डरो मत। इस तरह ईश्वर विश्वासी साधकों के लिए सब प्रकार से बहुत ही सहायता देने वाली बात यह है कि हम लोग अपने सहित अपने पास जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का है, इस सत्य को स्वीकार कर लें। अब देखिए, संसार बड़ा विस्तृत है, स्थूल शरीर और ज्ञानेन्द्रियां जो हैं, हाथ नाक कान, इनकी सहायता से हम संसार के बहुत थोड़े से हिस्से को देख सुन सकते हैं। सारे संसार को नहीं देख सुन सकते, संसार बहुत विस्तृत है। कोई भाई बहन ऐसे नहीं है जो सारे संसार को कहे कि मेरा है। अगर कोई ऐसा कहना पसंद करे तो कोई उसको ऐसा कहने देगा भी नहीं। बड़ी छोटी सी बात है, जहां अटक करके हम अनंत परमात्मा के अनंत प्रेम से वंचित रह जाते हैं। सोचो, लंबी चौड़ी धरती में से एक टुकड़ा को लेकर हम कहते हैं कि यह जमीन मेरी है, और बहुत सारी संसार की वस्तुओं में से थोड़ी सी वस्तुएं अपने पास रखकर हम कहते हैं यह मेरी है। सबको तो अपनी कह नहीं सकते। असंख्य असंख्य शरीरधारी संसार में हैं, उनमें से थोड़े से लोगों को हम लोग कहते हैं कि ये मेरे हैं। इस भूल से आसक्ति उत्पन्न होती है, हृदय में शुष्कता नीरसता अभाव भर जाता है, और उसके कारण जीवन बड़ा दुखी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, जीने में कुछ मजा नहीं आता, भय और चिंता से छुट्टी नहीं मिलती। जिन वस्तुओं को आप लेना चाहते हैं वे नहीं मिलती हैं, तो अभाव सताता है, गरीबी मालूम होती है, और जिन वस्तुओं को आप लेना चाहते हैं प्रकृति के विधान से वे वस्तुएं मिल जाती हैं, तो मिली हुई वस्तुओं के खो जाने का भय सताता रहता है। होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, वस्तुएं न मिले तो अभाव सतावे, और मिल जाएं तो उनके नष्ट होने की चिंता सतावे। यह कोई जिंदगी है? कभी भय में फंसे रहो, कभी चिंता में फंसे रहो, कभी अभाव में फंसे रहो, कभी निरस्ता से व्याकुल रहो, यह कोई जिंदगी नहीं है भाई। संत जन सलाह देते हैं कि भाई, ईश्वर विश्वास के आधार पर प्रभु की आत्मीयता से उदित प्रियता व्यक्ति के भीतर उपजती है तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम का रस ऐसा विलक्षण है, ऐसा विलक्षण है कि पहले तो उसी साधक को ही वह भरपूर करता है जिसके हृदय में प्रेम का रस बढ़ा नहीं, कि उसके भीतर की सब विकृतियां अपने आप से ही मिट जाती हैं, धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों के व्यापार का अध्ययन करते करते यह भी देखने को मिला कि प्रेम भाव की सरसता किसी के हृदय में बढ़ जाए तो बहुत सी शारीरिक और मानसिक बीमारियां मिट जाती है। जीवन की सरसता के आते ही बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। कोई बाहर से औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भवरोग जितने भी हैं स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकट हुए तो क्या, और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मानसिक विकारों के रूप में प्रकट हुए तो क्या, ये सब उत्पन्न होते हैं अपनी भूल से। ये रस के अभाव में ही, नीरसता की पीड़ा से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं। भय और चिंता के कारण से बहुत सी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, डिसेंट्री, ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी, गैस की बीमारी, अनेक प्रकार की एलर्जी, आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सब रोग मानसिक चिंता और भय से उत्पन्न होते हैं। बड़ा ही अस्वाभाविक जीवन है प्रेम भाव से शून्य रहना, हृदय में शुष्कता और नीरसता को रहने देना, सब प्रकार से अपना सर्वनाश करना है। संत जन सलाह देते हैं कि भाई रस के बिना तुमको जीना अच्छा भी नहीं लगता है, और रस का सागर, अथाह सागर, जहां रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, वह तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तुम्हारे भीतर बाहर सब तरफ समान रूप से भरपूर है। उस पर अगर तुम्हारी दृष्टि जाती, उसका सहारा तुमने लिया होता, तो तुम्हारी दुर्दशा का अंत हो जाता। ऐसा वे अनुभवी संतजन कहते हैं, कल्पना के आधार पर नहीं कहते हैं, हम लोगों का मन बहलाव करने के लिए नहीं कहते हैं। उन्होंने ऐसा करके देखा है और अपने सारे दुखों का अंत करके आनंदमय जीवन को अनुभव किया है। उस आनंद से अभिभूत होकर के हमारे जैसे भटके हुए लोगों को देखकर संतों के हृदय में करुणा द्रवित होती रहती है, और उनका जी होता है, भीतर से बड़ी व्याकुलता होती है कि कितना अच्छा होता कि हर भाई को, हर बहन को सन्मार्ग दिख जाता और वे अपना कल्याण करके ऐसे ही आनंदित हो जाते जैसे मैंने आनंदित होकर आनंदमय जीवन को देखा है। ऐसा होता है। लाइट ऑफ एशिया का एक गद्य खंड मुझे पढ़ने को मिला था, उसमें यह लिखा था कि परम कारुणिक महात्मा बुद्ध के जीवन में इस बात की बड़ी व्याकुलता रहती थी। वे कहते थे कि जो मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ से परम स्वाधीन परमानंदमय जीवन पा सकता है, वही मनुष्य अज्ञान के अंधकार में दुखों के भार से दबा हुआ धरती पर बिना पैर के कीड़े की तरह रेंग रहा है। यह महात्मा बुद्ध की बात है। जो मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ से परम स्वाधीन सर्व दुखों से मुक्त परमानंदमय जीवन प्राप्त कर सकता है, वही मनुष्य अज्ञान के अंधकार में दुखों के भार से दबा हुआ धरती पर बिना पैर के कीड़े की तरह रेंग रहा है। मनुष्यों की इस दशा को देखकर उस महापुरुष के हृदय में करुणा उद्वेलित होती रहती थी और उस करुणा से प्रेरित होकर के वे महापुरुष ग्राम ग्राम प्रांत प्रांत अविराम गति से घूमते रहते थे भटके हुए भाई बहनों को सन्मार्ग दिखाने के लिए। अनुभवी जनों से रहा नहीं जाता है, ऐसे ही अनुभवी संतों ने हम लोगों की आंखों के आगे से निराशा और अंधकार को मिटाने के लिए यह अनुभव सिद्ध सत्य हमें सुनाया। ईश्वर को मानते ही हो, बिना माने रह ही नहीं सकते, तो इतनी सजीवता से मानो कि उसका मानना तुम्हारे लौकिक पारलौकिक सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दे और फिर किसी और को मानने की आवश्यकता शेष न रह जाए। अगर संबंध जोड़ते हो तो उससे जोड़ो जो सदा सदा से तुम्हारा है और तुम्हारा ही होकर रहता है, कभी भी उससे तुम्हारा संबंध विच्छेद होता नहीं है। सब समय सदैव सर्वत्र नित्य निरंतर तुम्हारे ही में विद्यमान है। हम लोगों के लिए ये बातें सब सुनी हुई हैं, सुनी हुई बातें जो सत्य के आधार पर हैं, उनको मान लिया जाए तो उनका अनुभव हर मानव के जीवन में हो जाता है। प्रभु विश्वासी भाई बहनों को इस दिशा में थोड़ी सजीवता के साथ कदम उठाना चाहिए। यह केवल अपना मिथ्या भय है कि आज तक मैंने इस बात को पूरी तरह से नहीं माना कि मेरा कुछ नहीं है और मेरे सहित इस जगत में मेरा करके जो कुछ दिखाई देता है वह सब परमात्मा का है। कोई चिंता की बात नहीं, अब तक नहीं माना तो अब से सही, इसमें कोई शक नहीं है, मतभेद नहीं हो सकता किसी तर्क के आधार पर। इस बात को काटा नहीं जा सकता कि आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अतः आज से सही इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए कि जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का है। आप सोचिए ना, व्यक्तिगत अगर कुछ भी आपका अपना होता तो आपकी इच्छा अनुरूप वह रह सकता था, लेकिन कुछ नहीं है, किसी का व्यक्तिगत कुछ नहीं है, यह सत्य है। ईश्वर विश्वास की दृष्टि से जिन भाइयों ने, जिन साधकों ने केवल ईश्वर की ही स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है कि वे मान लें कि सब कुछ परमात्मा का है। सब कुछ परमात्मा का मान लेने के बाद दो परिणाम बड़े सहज ही निकलते हैं, जिसको आप सभी भाई बहन अनुभव कर सकते हैं। एक तो यह कि मेरा कुछ नहीं है, इसको मानने से ममता के रोग से मुक्त हो जाने पर वस्तुओं का चिंतन मस्तिष्क से खत्म हो जाता है और सब कुछ उनका है ऐसा मान लेने का एक सहज परिणाम यह होता है कि संसार की जिस जिस वस्तु पर आपकी दृष्टि जाएगी, जिन जिन वस्तुओं को आप देखेंगे, हर वस्तु आपके प्यारे की याद दिलाएगी। बहुत बढ़िया बात हो जाती है। आपने देखा होगा घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके खेलने के लिए बहुत से खिलौने होते हैं, तो माँ बाप की दृष्टि खिलौनों पर पड़ती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे के संबंध से बच्चे का खिलौना देख करके माँ बाप को बड़ा ही आनंद आता है, उनका हृदय स्नेह से उमड़ने लगता है, आपने देखा होगा। ऐसे ही जो ईश्वर विश्वासी हर वस्तु को अपने प्यारे प्रभु की मान लेता है, उसकी दृष्टि जिस वस्तु पर पड़ती है उस वस्तु के द्वारा अपने प्यारे की याद आती है, और याद आने मात्र से उनके हृदय में प्रेम उमड़ता है। ये अपनेपन के संबंध का बड़ा ही सुंदर प्रभाव है। अपना मानना जीवन को बड़ा ही मधुर बना देता है। एक बार की घटना है, मुझे याद आ गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। हमारी सहेलियों के पिता बगीचे में कुछ काम कर रहे थे। कुछ धूप थी और उनके बदन पर पसीना हो रहा था। उनके वृद्ध पिता घर में से निकले और कहने लगे कि धूप है, पसीना हो रहा है, छोड़ दो काम, छोड़ दो, हट जाओ। वे सज्जन फूल पौधों की सेवा कर रहे थे, उसमें उनका मन लग गया था, तो सुना नहीं उन्होंने, छोड़ करके हटे नहीं। तो वे बूढ़े बाबा भीतर गए और 3 साल का उनका पोता था उसको गोदी में उठा करके ले आए और धूप में खड़े हो गए। तो उनके बेटा कहने लगे कि बाबूजी, बच्चे को धूप लग रही है, ले जाइए भीतर। तो बुढ़े बाबा कहने लगे कि तेरे बच्चे को धूप लग रही है तो तुझे दुख हो रहा है, मेरे बच्चे को धूप लग रही है सो मैं कह रहा हूं कि पौधों में काम करना छोड़ दे, उठ जा, आ जाओ घर के भीतर। तो क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता है? अब देखिए कितना प्यार का वातावरण है, कितनी बढ़िया बात है। अब सोचिए, मनुष्य मनुष्य से संबंध मानता है, यद्यपि उसमें कोई सार नहीं है, यद्यपि वह माना हुआ संबंध है, मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता, लोभ मोह से मुक्त नहीं कर सकता, चिंता और अभाव से मुक्त नहीं कर सकता, फिर भी उस माने हुए संबंध का प्रभाव देखिए, बाप बेटे का प्यार देखिए, कितना मीठा है, कितना बढ़िया है। संतजन कहते हैं कि जो नित्य संबंध है उसको अगर तुम स्वीकार करोगे तो क्या उसका प्रभाव जीवन पर नहीं होगा? जरूर होगा। जब अनित्य संबंध का प्रभाव होता है तो नित्य संबंध का प्रभाव क्यों नहीं होगा? और नित्य संबंध के प्रभाव होने का अर्थ क्या है? उदाहरण देखिए, एक खिला हुआ फूल भक्तजन देखते हैं तो देख करके उसी पर मुग्ध हो जाते हैं। आहा, मेरे प्यारे ने यह बनाया, यह उनका बनाया हुआ पुष्प है, जिस परम सुंदर ने, जिस अनंत सौंदर्यवान ने इस पुष्प को इतनी सुंदरता दी, वो मेरा प्यारा स्वयं कितना सुंदर है। पुष्प रह गया जहां के तहां, आंखें खो गई भीतर भीतर उस प्यारे की परम सुंदरता की प्यास में। मस्ती की भावना बढ़ गई और अपनी दशा देखिए, झूठ मूठ सुख भोग की तृष्णा को लेकर के जगत की ओर हम देखते हैं, और जब उसमें जगत का दृश्य अपने को उद्विग्न बनाता है तो हम लोग जगत को दोषी बनाते हैं, फिर कहते हैं कि यह तो मायामयी सृष्टि है, इस सृष्टि में मैं परमात्मा को भूल गया, यह मायामयी सृष्टि का दोष है कि उसने हमें परमात्मा से दूर कर दिया। अब आप सोचिए कि आप परमात्मा से दूर हो गए तो यह सृष्टि का दोष है कि आपका दोष है? जरूर अपना दोष है। ईश्वरवादी जब प्यारे प्रभु की सृष्टि को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं, हर व्यक्ति को देखते हैं, और जिस जिस पर उनकी दृष्टि जाती है उन वस्तुओं को देख देख कर उनको अपने प्यारे की याद आती रहती है, और जैसे जैसे अपने ही में विद्यमान प्रेम स्वरूप परमात्मा की याद उनको आती है कि प्रेम का रस भीतर भीतर उमड़ने लगता है और हृदय प्रेम रस से भरा नहीं कि शरीर और संसार की विस्मृति हो जाती है। मनुष्य जिसकी भावना की रक्षा करने के लिए, जिसके प्रेम का आदर करने के लिए अत्यंत कोमल, नवनीत से भी अधिक कोमल, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत रहस्यमय परमात्मा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, उस मनुष्य की महिमा बहुत, अत्यंत कोमल परमात्मा प्रहलाद जी के लिए पत्थर से बने हुए खंभे में से निकल आए, आपने सुना ही होगा। मनुष्य की महिमा कुछ कम है क्या? कम नहीं है, बड़ी भारी महिमा है। अपनी महिमा भूल जाने से हम लोग हार मास की महिमा स्वीकार कर लेते हैं, इस भूल को मिटाना है। आपकी बड़ी महिमा है, आपके हृदय से उमड़े हुए प्रेम भाव का आदर करने के लिए ब्रह्म भाव को भुलाकर जीव भाव स्वीकार कर लेता है। मैया जशोदा का आंचल पकड़कर, दधी मथने वाली मथानी पकड़कर विश्वंभर खड़ा होकर मचल रहा है कि मैया मुझे माखन दे दे, माखन मांग रहा है। भक्त हृदय के उमड़ते हुए प्रेम भाव का आदर करने के लिए उस रस से प्रेरित होकर ब्रह्म जो है वह ब्रह्म भाव का त्याग करके जीव भाव को स्वीकार करके मैया को पकड़ के मचल रहा है कि मुझे माखन दे दे। मथानी पकड़ लिया, आंचल पकड़ लिया, चलाने नहीं दे रहा है, मैया क्या करे, माखन निकले कैसे? थोड़ी देर में देख करके कि माखन तो निकल ही नहीं रहा है, मैया दे ही नहीं रह सकती है, तो कहते हैं कि मैया तो मुझे दूध ही पिला दे। श्री महाराज जी हम लोगों को सुनाते थे कि मानव का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इसकी बड़ी महिमा है इस दृष्टि से कि मरणशील शरीर को लेकर नाशवान धरती पर विचरण करते हुए अजर अमर अविनाशी अनंत माधुर्यवान परमात्मा को रस प्रदान करने में समर्थ है। अगर उस ऊंचाई तक हम लोगों ने इस जीवन को पहुंचाया नहीं तो जिंदगी का क्या उपयोग किया, सोचो तो। उस ऊंचाई तक इस जीवन को पहुंचने देना है, अपने को और कुछ नहीं करना है, केवल भूल मिटाना है। कौन सी भूल? सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा, उसमें से एक एक वस्तु मैंने पकड़ लिया कि यह मेरी है, इस जड़ वस्तु के साथ वह ममता का विकार जुट गया, उसने हृदय को आच्छन्न कर लिया। जहां पर ईश्वरीय प्रेम की गंगा लहरानी चाहिए थी, वहां आसक्ति की जड़ता भर गई। समझ में आया? इसलिए दो महावाक्य जिन पर हम विचार कर रहे हैं उन्हें मैं फिर दोहराऊं, सुनिए। जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उनका है, सब उनका है, सब उनका है, ऐसा मानो। डरने की कोई बात नहीं है कि उनका कह देंगे तो वे उठा ले जाएंगे। अरे नहीं भाई, उनके यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैंने तो ऐसा देखा है कि जब व्यक्ति भूलों का त्याग कर देता है और सचमुच जो मालिक है उसी की दुनिया है ऐसा मान लेता है, तो वे मालिक आनंदित होकर के और अधिक अधिक उसके सामने सब कुछ बरसा देते हैं। खूब प्रेमी की प्रसन्नता पर वे त्रिभुवन निछावर कर सकते हैं, इतने उदार हैं और ऐसे अथाह हैं कि ना किसी वस्तु की कभी कमी होने पाती है, ना उनकी उदारता कभी घटती है। जिस व्यक्ति ने ममता का त्याग किया कि सचमुच मेरा कुछ नहीं है और यह कहा कि हे मेरे प्यारे, यह सारी सृष्टि आप ही की है, ये सारी वस्तुएं आप ही की हैं, तो बस वह ममता से मुक्त हो गया। और सृष्टि के मालिक जो हैं वे वस्तुओं को उपयोग में लाने से कभी मना नहीं करते हैं, देने में कभी कमी नहीं करते हैं, उठा के ले भी नहीं जाते हैं और अधिक से अधिक आपके सामने भर देते हैं। इसलिए बड़ी बढ़िया बात है कि इस एक सत्य को जीवन में प्रयोग करके हम लोगों को देखना चाहिए। यह बड़ा ही जोरदार प्रयोग है। अपने अपने जीवन को लेकर के सत्य का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए जरूर। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कहने में मुझे भी अच्छा लग रहा है, उससे भी अधिक उत्साह हम लोगों को होना चाहिए इस सत्य का जीवन पर प्रयोग करने में। घटेगा कुछ नहीं, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रयोग ही तो है, प्रयोग करके देखो, बड़ा आराम मिलेगा। मुझे इस प्रयोग में उत्साहित करने के लिए स्वामी जी महाराज ने एक बार सलाह दी। यह कहा कि यह झूठी शिकायत है तुम्हारी कि दुनिया को देखने से भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान को हम भूल जाते हैं। तुम एक काम करो, हर वस्तु पर जो जो तुम्हें दिखाई दे सब पर अपने प्यारे के नाम का स्टैंप लगा दो। तब क्या होगा कि जिस पर तुम्हारी दृष्टि जाएगी तुमको याद आएगा कि यह मेरे प्यारे का है। प्यारे की वस्तु को देखने में भी प्रीति आती है। श्री महाराज जी ने कहा, देखो उन प्यारे का ऐसा विलक्षण ढंग है, आत्मीय संबंध उनको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। वे क्या करते हैं कि किसी वस्तु को आपने देख लिया और देखते ही आपको याद आ गई कि यह तो मेरे प्यारे की है, कितनी अच्छी है। तो जैसे जैसे प्यारे की याद आने से आपके भीतर प्रीति बढ़ेगी, परमात्मा को बड़ा रस मिलेगा। वस्तु के रूप में वे स्वयं ही तो हैं, खूब आनंद का आदान प्रदान होता रहता है। दार्शनिक सत्य भी आपने सुना होगा कि वह एक ही अव्यक्त इस व्यक्त जगत के रूप में विस्तृत हुआ है। आस्तिक दृष्टि से देख लीजिए, भोला भाला भक्त बिचारा जो होता है वह नहीं जानता दर्शन, वह नहीं जानता अव्यक्त, वह नहीं जानता विधान, सो सब कुछ नहीं। उसके सामने एक गौ का बच्चा आ गया, एक बिल्ली का बच्चा आ गया, एक खिला हुआ फूल दिखाई दे गया, एक जल की बहती हुई धारा दिखाई दे गई, वृक्ष के पत्ते हिलते हुए दिख गए। जो जो दिख रहा है उस सब के बारे में हृदय में उसके भाव उठ रहा है कि यह भी मेरे प्यारे का, यह भी मेरे प्यारे का, यह भी मेरे प्यारे का। तो जैसे जैसे उसके हृदय में देखे हुए जगत के माध्यम से अपने प्यारे की याद आ रही है, हृदय में प्रीति बढ़ रही है, वैसे वैसे भक्त हृदय की बढ़ती हुई प्रीति का रसास्वादन करने के लिए वे ही बहुरूपिये अपना जगत रूप छिपा करके अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्त और भगवान के मिलन से संपूर्ण जीवन भरा ही